Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Prashnopanishad, presented by Vishwamatmananda Guruji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
जो मनुष्य शरीरधारी जीव सूत्रात्मा की अहंग्रह उपासना कर रहा था, उसका सायुज्य तो उसे प्राप्त हुआ नहीं, क्योंकि सूत्रात्मा का ही शरीर छूट गया और सूत्रात्मा ब्रह्मज्ञानी होने से वह तो विधेय मुक्ति को प्राप्त हुआ। और उनके साथ उनके लोक में जो जो भी निर्विशेष ब्रह्म का आत्मरूप से बोध प्राप्त कर चुके से थे, वे भी विधेय कैवल्य को प्राप्त हुए। और बाकी सब तो अपने अपने सूक्ष्म शरीर भूत सूक्ष्म और संचित कर्म क्रियमान कर्म इन सब को संस्कार रूप से अपनी अहंता में समाविष्ट करके लीन हो गए। किसमें? जिसे माया कहा जाता है, माया कूटस्थ, और कूटस्थ का अर्थ है कूट का अर्थ है एक राशि। सारे जीवों के संस्कारात्मक जो रूप महाप्रलय में रहते हैं, उन जीवों के संस्कारों की राशि का नाम है माया। पुंज, संस्कारों का पुंज, और उसी पुंज के तरह स्थित है यह माया, इसलिए उसे कूटस्थ कहा गया। कूटस्थो अक्षर उच्चते में। और जब महाप्रलय का समय पूरा हो जाता है, द्वितीय कल्प प्रारंभ होता है जो वर्तमान में है, पूर्व कल्प के महाप्रलय का समय पूरा हुआ और फिर प्राणियों का कर्म जो पूर्व कल्प में शरीर छोड़ते समय प्रारब्ध के रूप में निर्धारित हुआ था सबका अपना अपना, तो जो अहंग्रह उपासक था सूत्रात्मा का, उसका प्रारब्ध हिरण्यगर्भ बनने का, सूत्रात्मा बनने का वो जो उपासना है, वही प्रारब्ध बन करके अभिमुख हुई थी। तो ईश्वर फिर वो जो संस्कारात्मना स्थित उपासक हैं, जिसकी उपासना परिपूर्ण हुई थी, उसे पहले ही अपने संकल्प से भावी कल्प का सूत्रात्मा निश्चित कर चुके हैं। और वो शरीर छोड़ते समय पूर्व का उसी भावी कल्प के सूत्रात्मा के कार्यक्रम संघात को अपनी अहंता का आलम्बन बना करके ही लीन हुआ था संस्कारात्मना। सभी जीव इस कल्प के प्रारंभ में जिसको जो बनना है, उस शरीर को अपनी अहंता का आलम्बन बना करके ही संस्कारात्मना अवस्थित होते हैं प्रलय काल में। फिर जिसकी जिसकी अहंता का आलम्बन पूर्व शरीर छूटते समय भावी शरीर जो जो बना था, वह प्रकट हो जाता है। तो सूत्रात्मा भी उसी समष्टि प्राण के रूप में सर्वप्रथम परमात्मा से उत्पन्न होता है और फिर ये समष्टि प्राण को अपनी अहंता का अभिव्यक्त प्राण को आलम्बन बनाता है। पहले से ही थी, विकसित हो गई। ऐसे वट कनिका के अंदर पूरा का पूरा वट वृक्ष समाविष्ट रहता है, लेकिन समय पा करके पहले अंकुरित होता है, फिर उसके दो पत्ते होते हैं, फिर एक एक शाखाएं बढ़ते बढ़ते विशाल वट वृक्ष बनता है। वो सारा विशाल वट वृक्ष सूक्ष्म रूप से उसके अल्प से बीज में रहता है। ऐसे ही हमारी अहंता के अंदर वो सब हम जो जीवन में देखते हैं वो रहता है पहले से ही, ये सारा शरीर भी वही प्रकट हो जाता है। तो सूत्रात्मा प्रकट होते इस प्रकार, और फिर उनका भोगायतन समष्टि शरीर भी बनता है और उसमें वह प्रविष्ट हो जाता है। उनको प्रविष्ट कौन करता है? तो जो मनोकृत है, का मतलब पूर्व जन्म में की हुई सकाम उपासना है, सूत्रात्मा बनने की, ये सकाम उपासना और साथ में कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठान किया था ना, जो पूर्व कर्म कल्प में किया गया प्राण उपासना के साथ साथ स्ववर्णाश्रम विहित कर्म, ये हुआ मनोकृत शब्द का अर्थ, और उस मनोकृते न आयाति अस्मिन शरीर, इस शरीर में आता है। ऐसे प्रत्येक जीव जो कल्प हरेक शरीर में अपने अपने पूर्व जो कर्म है और वर्तमान में फल देने के लिए अभिमुख हुए हैं प्रारब्ध, उस प्रारब्ध के कारण ही शरीर में उनके यह प्राण आता है। खाली प्राण ही नहीं आता, प्राण के साथ वो सब जीव भी आते हैं, जीव प्राण धारणे है ना, और उन जीवों के भोगोपकरण इंद्रिया सब भी आते हैं, ये कहा गया। तो मनोकृतेन आयाति अस्मिन शरीरे, जो हाँ, ऐसा है कि ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने से पहले तक यदि एक कल्प में तो कई उपासक होते हैं, कई उपासकों की उपासना का परिपाक हो जाता है, तो जिसकी उपासना का परिपाक हिरण्यगर्भ की आयु समाप्त होने से पहले हुआ तो वे तो वर्तमान कल्प के हिरण्यगर्भ के कार्यक्रम संघात का ही सायुज्य प्राप्त करेंगे। सायुज्य का अर्थ होता है जो वर्तमान में हिरण्यगर्भ का कार्यक्रम संघात है, उस कार्यक्रम संघात को ही अपनी अहंता का आलम्बन बनाना, तो वह कार्यक्रम संघात एक तो जो ईश्वर के द्वारा निष्पन्न हुआ सृष्टि के प्रारंभ में हिरण्यगर्भ है, उनकी अहंता का भी आलम्बन रहेगा, और इस कल्प के बीच में जितने भी हिरण्यगर्भ की अहंग्र उपासना करके परिपूर्ण होगी और हिरण्यगर्भ सायुज्य प्राप्त करने योग्य होगी, तो उन सबका वेष्टि शरीर छूटने के बाद हिरण्यगर्भ के ही कार्यक्रम संघात में उनकी भी अहंता स्थित होगी, इसलिए उसमें एक ही जीव नहीं है। उस कार्यक्रम संघात को अपनी अहंता का आश्रय बनाए हुए कई जीव हैं, जिनकी जिनकी उपासना परिपूर्ण हुई सब उसी शरीर से वह हिरण्यगर्भ को होने वाला जो सुख है उस सुख का अनुभव करता है, लेकिन जीवों में आपस में भेद रहता है। मुख्य हिरण्यगर्भ वो अलग है और बाकी जो सायुज्य प्राप्त जीव है कार्यक्रम संघात एक होने पर भी उनकी अहंताएं अलग अलग हैं, और उन अलग अलग अहंता को लेकर के वे अलग अलग हैं, लेकिन एक में ही वे रहते हैं, ये उसी शरीर से भोग करते हैं, मुख्य हिरण्यगर्भ भी और वे भी। और वहां पर तो ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए जो भी हैं उनको भोग होना होता है संकल्प मात्र से, सत्य संकल्प हो जाता है ब्रह्मलोक में पहुंचा हुआ हर एक जीव, और भोग में वहां पर कोई पक्षपात नहीं है। ये नहीं कि हिरण्यगर्भ के लिए कोई अलग रसोई बन रही हो, उनमें कुछ सब्जियां ज्यादा हो और बाकी के लिए दाल और चावल मात्र बन रहा हो, दाल भी खोजने पर मिलती होने तो पानी पानी हो, ऐसा नहीं। वहां तो सबके लिए एक जैसा ही भोग है। हाँ, कई जीवों का तादात्म्य है। हाँ हाँ, जिन्होंने सायुज्य प्राप्त कर लिया। लोकांत पाती मुक्ति के चार प्रकार है ना, अवान्तर, सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य और सालोक्य। उनमें से सायुज्य मुक्ति जिन्होंने प्राप्त कर ली है वे सब के सब हिरण्यगर्भ का जो कार्यक्रम संघात है उसी कार्यक्रम संघात में ही रहेंगे। सायुज्य मुक्ति मुख्य है, बाकी जो है, और ये अवान्तर भेद फल में कैसे होता है तो उपासना में न्यूनाधिक्य होने से, उपासना पूरी 100% पूरी हो जाए जैसी होनी चाहिए ऐसी ही, कोई न्यूनता न रहे, तो जो 100 में से 100 नंबर लेता है वो भी पास होता है और 35 लेता है वो भी पास हो जाता है। लेकिन दोनों के पास होने में फर्क होता है ना, तो ऐसे ही उपासना पूर्ण रूप से जिसकी हो गई है वो तो सायुज्य को प्राप्त करेंगे, जिसको 90+ नंबर है तो सामीप्य आदि होगा जिनको, और फिर 90 से नीचे के हैं लेकिन 75 के बीच वाले हैं तो वो सारूप्य हो जाएंगे, और 75 के नीचे वाले जितने हैं अपने सालोक्य में चले जाएंगे। उसके लिए बिल्कुल 100% नंबर लाते हैं जो, उन्हीं को सायुज्य मिलता है। उनकी अहंता वैसी होनी चाहिए, यानी चित्त की, और वो हाँ स्थिति ऐसी होनी चाहिए तो सायुज्य वही यहीं पर प्राप्त करेंगे। और कल्पांत में एक ही उपासक रहेगा जिसकी उपासना का परिपाक हुआ, बाकी जो उपासक होंगे परिपाक यानी 100% पूरी, तो इसलिए दूसरे कल्प में जो हिरण्यगर्भ बनेगा वो एक ही रहेगा, बाकी में वो प्रतिशत कम होने से ब्रह्मलोक के नागरिक के रूप में बनेंगे और उस ब्रह्मा जी के हिरण्यगर्भ के सारूप्य को कुछ प्राप्त करेंगे, कुछ सामीप्य को प्राप्त करेंगे, कुछ वहां के नागरिक बन करके रहेंगे, ऐसा होगा। उपासक तो कहीं रहेंगे लेकिन उपासकों में जिसकी पूरी पूरी ठीक उपासना है वही हिरण्यगर्भ बनेगा, और बीच वालों का तो सायुज्य यही होना है, लेकिन उसमें यह होता है कि किसी के इस कल्प के प्रारंभ पूर्व कल्प के प्रारंभ में ही उसने सायुज्य मुक्ति का साधनभूत उपासना की, उसे लंबे समय तक सायुज्य मिलेगा, और किसी किसी की 1-2 वर्ष की आयु पूर्व कल्प के हिरण्यगर्भ की शेष रहते हुए सायुज्य मुक्ति हुई, तो उनको तो 1-2 कल्प में ही वो सायुज्य का अनुभव करना है, 1-2 वर्ष में, उसके बाद में तो फिर मुक्त होना है, विधेय मुक्त होना है, और बाकी को तो सालोक्य है, सामीप्य है, वो सब है। तो ये कहते हैं कि मनोकृतेन आयाति अस्मिन् शरीरे, इस शरीर में आता है मुख्य प्राण प्रारब्ध निमित्त से, ये कहा गया। और फिर वेष्टि में भी जैसे समष्टि में ऐसा वेष्टि में भी आने का निमित्त प्रारब्ध रहेगा अपना अपना, उस प्रारब्ध के अनुसार ही सारे सूक्ष्म शरीर अंतःपाती तत्वों को लेकर के और अपना जो स्वामी है जीव उसको लेकर के इस शरीर में प्रविष्ट होगा वो प्राण। तीसरा प्रश्न है कि इस शरीर में प्रविष्ट होकर के प्राण अपने अलग अलग विभाग करके कैसे स्थित होता है और चक्षुरादि को भी अपने अपने गोलकों में स्थापित करके कैसे रहता है, ये प्रश्न है ना। तीसरा, इसका उत्तर देते हुए चतुर्थ कंडिका में इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पहले एक दृष्टांत बताया जा रहा है कि यथा सम्राट एव अधिकृतान विनियुंते एतान ग्रामान अधितिष्ठस्व इति एवं एव एष प्राण इतरान प्राणान पृथक पृथक एव सन्निधत्ते। ये चतुर्थ खंडिका में तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है। तो इसलिए लौकिक पहले दृष्टांत दिया, मान लो कोई एक चक्रवर्ती राजा है, सम्राट है, और उसे मान लो भारत के राष्ट्रपति समझ लो, और वे तो रहेंगे राष्ट्रपति भवन दिल्ली में, और दिल्ली में रह करके सारे प्रांतों का उन्हें राज्य करना है, सुव्यवस्था देखनी है। तो इसके लिए सारे प्रांतों में स्वयं ही ये नहीं रहते हैं ना, अपने प्रतिनिधि के रूप में स्थापित करते हैं राज्यपालों को, गवर्नरों की नियुक्ति करते हैं। ऐसे यहां पर यह कहा जा रहा है कि फिर तो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है कि महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ये होंगे, तो वही उन्हीं को शपथ दिलाई जाती है निश्चित समय के लिए कि इतने समय के लिए राज्यपाल इस प्रांत के ये हैं। फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर मध्य प्रदेश के लिए जिसके हुए, वही मध्य प्रदेश के राज्यपाल की शपथ लेगा, वही वहां पर राजभवन में रहेगा, राजभवन में रह करके उतने राज्य के सुव्यवस्था को देखेगा। ऐसे जितने प्रांत उतने राज्यपालों की नियुक्ति जैसे राष्ट्रपति करते हैं, ऐसे ही ये तो उदाहरण हुआ। और ये कहा कि एवं एव एष प्राण, ये जो शरीर है ये भी एक राष्ट्र की तरह राष्ट्र है समझ लो, और इस शरीर की सुव्यवस्था के लिए जो उपकरण है मुख्य प्राण के, मुख्य प्राण है राष्ट्रपति स्थानीय, और वह क्या करता है कि चक्षुरादि इंद्रियों को इस शरीर में जो उनके अपने अपने गोलक हैं वो राजभवन के तरह है, एक प्रकार से ऑफिस राज्यपालों के, और उसमें स्थापित कर देता है चक्षु को इस नेत्र गोलक में, श्रोत्र को कर्ण सस्कुली में, घ्राण को ये जो दिखता है आंख से नाक नाशिका उसमें, और रसन इंद्रिय को जिह्वा पर, ऐसे त्वग इंद्रिय को त्वचा पर, ऐसे सारे दसों इंद्रियों को उनके अपने अपने गोलकों में, और मन को हृदय में स्थापित कर देता है, और अपने भी पांच विभाग करके अलग अलग स्थानों में स्थापित कर देता है ये मुख्य प्राण। इसे बताया गया कि एवं एव एष प्राण इतरान प्राणान, इतरान प्राणान शब्द से तो लेना चक्षुरादि को, ये गौण प्राण कहलाते हैं, उनको अपने अपने गोलकों में स्थापित करता है, पांचों कर्मेंद्रियों को उनके अपने अपने गोलकों में, कहता है कि तुम यहां रहो, तुम यहां रहो, तुम यहां रहो, और अपने अपने जो उचित कार्य है वो करते रहो, इस शरीर में जो आया हुआ जीवात्मा है उसके प्रारब्ध का फलोपभोग ठीक से हो सके, इसके लिए जो तुम्हें कार्य दिया हुआ है वह ठीक से कार्य करो, यानी सेवक के रूप में एक प्रकार से स्थापित कर दिया अलग अलग स्थानों में, और अपने भी अलग अलग पांच विभाग करके स्थापित हो जाता है स्वयं भी अलग अलग स्थानों में। तो बताया जा रहा है कि किसको कहां स्थापित करता है, अपने पांच वृत्तियों में से किस वृत्ति को इस शरीर में कौन से स्थान में स्थापित करता है। इसके लिए पंचम कंडिका में बताया जा रहा है कि पायुपस्थे अपानम चक्षुस्रोत्रे मुखनाशिकाभ्याम प्राणस्वयं प्रातिष्ठते मध्येतु समानः येष हेतद् हुतम् अन्नम् समम् नयति तस्माद् एताः सप्ता अर्चिषो भवन्ति। तो ये मुख्य प्राण का एक वृत्ति विशेष है अपान, यानी भेद विशेष है। तो अपान नामक जो अपना एक भेद है उसे वह पायु और उपस्थ में स्थापित करता है और इस प्राण वृत्ति का व्यापार क्या है, कार्य क्या है। तो हम लोग जो अन्न खाते हैं, जलादि पीते हैं, छांदो के उपनिषद में कहा गया कि अशितम अन्नम त्रेधा विधीयते, खाए हुए अन्न के तीन विभाग होते हैं पाचन क्रिया से, स्थूल मध्यम सूक्ष्म। उसमें से जो स्थूल भाग है अन्न का वह मल बन जाता है, उसे पुरुष कहा जाता है, और वह यदि स्टोर होता ही रहे, मल शरीर के बाहर निकले ही ना, तो जीना मुश्किल है। इसके लिए और जो खाया पिया हुआ पानी है उसके भी तीन भाग बनते हैं, जो स्थूल भाग है उसका बन जाता है मूत्र, और मल मूत्र का विसर्जन यानी शरीर से बाहर निकलना न हो तो जीवन चलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यह अपना अपान नामक जो एक भेद है वह ये तीन विभागों में विभक्त अन्न और जल से, स्थूल जल और अन्न से बना हुआ मूत्र पुरुष को शरीर से बाहर निकालता रहता है, ये कार्य करता हुआ वो रहता है पायु और उपस्थ में। पायु में रह करके मल को दूर करता है, उपस्थ में रह करके शरीर से निकालता है मूत्र को, और जो मध्यम है उससे बन जाता है मांस अन्न के मध्यम अंश से और रक्त आदि, और सूक्ष्म जो अंश है उससे बनता है अन्न। इसलिए कहा अन्नमयम ही सौम्य मन है, और हिंदी में कहा जाता है जैसा खाए अन्न ऐसा बने मन। तो अन्न से मन बनता है का मतलब पुष्ट होता है। ऐसे तो मन पहले से ही एक तत्व है, न शुरू से बना हुआ है, लेकिन उसे शक्ति मिलती है, स्मरण शक्ति मिलती है अन्न से। नहीं तो न खाए अन्न उसका सूक्ष्म भाग न बने तो मन भी कमजोर होता है। तो ऐसे जल का भी, जल से बनती है वाणी, जल से प्राण और तेज से वाणी। तो ये पायुपस्थे अपानम यानी अपान वृत्ति को स्थापित करता है पायु और उपस्थ गोलक में, और ये शरीर में से मल मूत्र का विसर्जन वो करता रहता है। चक्षु और श्रोत्र में स्वयं रहता है, प्राण नाम की जो वृत्ति है ना वो मुख्य है, वो राष्ट्रपति के तरह है, वो रहता है श्रोत्र और चक्षु में, वो राष्ट्रपति भवन है यहां। और वो क्या करता है तो मुखनाशिकाभ्याम निर्गमन, मुख और नासिका से बाहर निकलता है, फिर अंदर आता है और उसका स्थान है, निवास स्थान चक्षु और श्रोत्र प्राणवृत्ति का। समान का स्थान नाभि में बताया जा रहा है, इसकी चर्चा हम लोग कल करते हैं। हरिओम।